हरे कृष्णा। तो आज के इस 13 अप्रैल के प्रभात जागृति में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। आज के इस कथा में हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 80वें अध्याय से पढ़ रहे हैं और आज का श्लोक क्रमांक 4 है, लेकिन आपके जानकारी के लिए हम पहले 3 भी श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे। पहला श्लोक इस प्रकार से है, अध्याय का नाम द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण सुदामा की भेंट। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं उन असीम शौर्य वाले भगवान मुकुंद द्वारा संपन्न किए गए अन्य शौर्यपूर्ण कार्यों का विषय सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, जो जीवन के सार को जानता है और इंद्रिय तृप्ति के प्रयास करने से उब चुका है, वो भगवान उत्तम श्लोक की दिव्य कथाओं को बार बार सुनने के बाद भला उनका परित्याग कैसे कर सकता है? असली वाणी वही है जो भगवान के गुणों का वर्णन करती है। असली हाथ वे हैं जो उनके लिए कार्य करते हैं। असली मन वो है जो प्रत्येक जड़ चेतन के भीतर निवास करने वाले भगवान का सदैव स्मरण करता है। और असली कान वो है जो निरंतर उनकी पुण्य कथाओं का श्रवण करते हैं। अभी चौथा श्लोक, शिरस्तु तस्यो भयलिंगमाना, मेत्तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः, अंगानि विष्णोरथतज्जनानां, पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। शिरस्तु तस्यो भयलिङ्गमाना मित्तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः। अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां, पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। शिरस्तु तस्यो भयलिङ्गमाना मित्तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः। अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां, पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। मेरा विचार है कि मैं तुरंत उसका अनुवाद पढ़ूंगा, समय के अभाव की वजह से। वास्तविक सिर वही है जो जड़ और चेतन के बीच भगवान की अभिव्यक्तियों को नमन करता है। असली आंखें वे हैं जो एकमात्र भगवान का दर्शन करती है। असली अंग वे हैं जो भगवान या उनके भक्तों के चरणों को पखारने से प्राप्त जल का नियमित रूप से आदर करते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक को तात्पर्य नहीं है। सूत उवाच, विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान बादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो हृदयो ब्रवित। सूत गोस्वामी ने कहा, विष्णुरात यानी परीक्षित द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर शक्ति संपन्न ऋषि बादरायणी यानी व्यासदेव ने, सॉरी सुखदेव ने, बादरायणी जिनका हृदय भगवान वासुदेव के ध्यान में पूर्णतया लीन रहता था, उन्होंने ये उत्तर दिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान का एक ब्राह्मण मित्र सुदामा नामक था, जो वैदिक ज्ञान में प्रकांड पंडित था और समस्त इंद्रिय भोग से उदासीन था। इससे भी बढ़कर उसका मन शांत था और उसकी इंद्रियां संयमित थी। गृहस्थ के बाती रहते हुए भी जो कुछ उसे अपने आप मिल जाता था, उसी से वो अपना भरण पोषण करता था। मैले कुचेले वस्त्रधारी उस ब्राह्मण की पत्नी उसके साथ कष्ट भोग रही थी और भूख के कारण दुर्बल हो गई थी। तात्पर्य, सुदामा की पतिव्रता पत्नी भी मैले कुचेले वस्त्र पहनती थी और उसे जो भी भिजन भोजन मिलता था वो अपने पति को ही देती थी। इस तरह वो भूख से हमेशा थकी थकी रहती थी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रथम श्लोक में ऐसा कहा गया है कि जो भगवान के शौर्य पर कारण है, कार्य है, उसके बारे में बताइए। उसके बारे में वो कहते हैं कि जो जीवन के सार को जानते हैं और भौतिक दुनिया में इंद्रिय भोग का आनंद लेने का बहुत प्रयास कर चुके हैं, तरह तरह के प्रयत्न कर चुके हैं, लेकिन फिर थक गए हैं और उनको पता चल गया है कि इस भौतिक दुनिया में कितना भी प्रयास करेंगे सुख प्राप्ति का इंद्रिय भोग के द्वारा, वो नहीं मिल सकता है। ऐसे उनको एक अनुभूति आ गई है बहुत समय के बाद में। ऐसे लोग फिर भगवान उत्तम श्लोक, यानी कि जिनका उत्तम श्लोकों के द्वारा गुणगान किया जाता है, ऐसे भगवान के बारे में जब वो सुनते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है। जो उनको नहीं मिल रहा है यहाँ पर, वो वहाँ मिलने लगता है। तो ऐसा आनंद मिलने पर वो क्यों छोड़ सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं भगवान की कथाओं का वर्णन, कैसे उसको त्याग कर सकते हैं? उनको पता चल गया कि यहाँ गंदगी है या आनंद है, तो दोबारा गंदगी और क्यों जाएंगे? वो आनंद की ओर ही जाएंगे अगर उनको आनंद का रुचि लग गया है तो। फिर यहाँ पर तीन श्लोकों में अलग अलग हमारे पास जो सुविधाएं भगवान ने दी है उसका वर्णन किया गया, जैसे कि वाणी, हाथ, मन, कान, उसके बाद में सिर, उसके बाद में आँखें, उसके बाद में भगवान के चरणों का जल, माने अपने अंग जो हैं, इन सबका सुंदर वर्णन किया गया है। और अम्बरीश महाराज की कथा में भी इसका वर्णन आता है कि कैसे अम्बरीश महाराज ने अपने सारे अंगों का, सूक्ष्म और स्थूल हमारे पास इंद्रियां हैं, उन सभी इंद्रियों का उपयोग करके उन्होंने कैसे अपने जीवन की परिपूर्णता प्राप्त कर ली। हमारे जो इंद्रिय हैं उसमें दो प्रकार हैं, एक सूक्ष्म और स्थूल। पांच हमारे ज्ञानी इंद्रिय हैं, जो हमारी आँखें हैं, कान हैं, जिह्वा है, स्पर्श है और वाचा, नहीं, कान हो गया, आँखें हो गई, जिह्वा हो गई और नाक हो गया और त्वचा, स्पर्श। ये स्पेशल इंद्रिय है हमारे, ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, इसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और पांच कर्मेंद्रिय हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक कंठ है, एक जननेंद्रिय है और पेट है, राइट, उदर, उपस्थ, उदर और उपस्थ, उदर, एनस, सॉरी एनस, गुदा, गुदा और जननेन्द्रिय, कंठ, हाथ और पैर, ये दश कर्म, पंचम कर्म इंद्रिय और पंचम ध्यान इंद्रिय। तो समझने वाली बात यह है कि इन सब के विषय होते हैं, हर एक इंद्रियों का एक विषय होता है। जैसे कि कानों से हम सुनते हैं, आँखों से हम देखते हैं और पैरों से हम चलते हैं, कंठ से बोलते हैं, जिह्वा से चखते हैं स्वाद। लेकिन जब तक हम इन इंद्रियों का संपर्क उनके विषयों से भगवान को अलग करके करते रहते हैं, तो हमको सबको ये पता होना चाहिए कि इंद्रियों में पाप जमा होने लगता है, इंद्रियां पापों का संचय करने लगती है। इंद्रियां बनाई इसलिए गई है कि हम सब लोग उस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। ऋषिकेन ऋषिकेश भक्तिरुत्तम, इज दैट राइट? सेवनम भक्ति रुचते। जब हमारी इंद्रियों के द्वारा हम भगवान की इंद्रियों को सेवा करते हैं, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं। हमारी इंद्रियां पुराने पापों के संचय से मुक्त हो जाती हैं और हमारी इंद्रियां परिपूर्ण अवस्था में आनंद का अनुभव करती हैं। इंद्रियां विषय का संपर्क क्यों करती हैं? से जिह्वा को देखकर जिह्वा को लगता है कि जलेबी खाई जाए, क्योंकि जिह्वा को लगता है जलेबी खाने से आनंद मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा उसके अंदर से। तो आनंद की खोज में इंद्रियां विषयों के पीछे दौड़ती रहती है, मतलब मन इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करने के लिए दौड़ते रहता है। उसमें एक ही इच्छा रहती है कि आनंद मिलेगा, अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जब तक भगवान को छोड़कर वो इंद्रियों के पीछे भागते रहता है, तो वो उस संपर्क से केवल विषय ग्रहण करता है। इसको शास्त्रों में कालिया का भी एग्जाम्पल दिया गया है। कालिया के थनों में इतना, वो फनों में इतना विष था, इतना विष था, वैसे ही इंद्रियां हमारी विष जमा करती रहती है। ऐसे कहते हैं कि एक होता है विष जिसको पीकर हम मर सकते हैं, विष का प्राशन किया तो हमारा जीवन समाप्त हो सकता है, लेकिन उस विष से भी भयंकर ये विषय वासना का और विषय सेवा भोजन भोग का विष भयंकर माना गया है। एक विष खाने से शरीर समाप्त होता है, दूसरा शरीर प्राप्त हो सकता है, लेकिन विषय वासना का विष प्राप्त करने से हम अनंत काल तक भगवान से दूर फेंके जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म उसका दुष्परिणाम हो सकता है। और बाकी सभी जीवों के जीवन में उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है कि भाई विषय क्या होते हैं, विषय का संपर्क क्या होता है, भोग क्या होता है, भगवान क्या होता है, कर्म क्या होता है, कर्म का फल क्या होता है, कोई उनका कनेक्शन नहीं है। वो अपना जैसे विषय सामने आया उसका भोग लिया, आगे चले गए। स्त्री आई, मादी आई, भोग कर लिया, आगे चले गए। संकट आया, रक्षा कर ली, आगे चले गए। नींद आई, सो गए। जो भी लगता है, जो भी सामने आ रहा है, फटाफट उसका रिप्लाई देना है बस, और आगे सोचने का उनमें गुंजाइश नहीं है, वो सॉफ्टवेयर लगाए नहीं उनके अंदर। एक ही मनुष्य जीव ऐसा है जिसके अंदर ये विचार करने की प्रवृत्ति भगवान ने दी है, इसलिए उसको मानव कहा गया है, मनुष्य कहा गया है। जिसका मन जो है वो कार्यान्वित है, एक्टिवेटेड है, उसका स्पेशल फैसिलिटी उनको दिया गया है। और हमको ये ज्ञान भी दिया गया है कि विषय का जो गति है वो कैसे हो सकती है, अगर वो भोगों के विषय में जाएगा तो क्या होगा उसका। भगवान गीता में वर्णन करते हैं, हाँ, ध्याय तो विषय हम पुंसा, विषय का ध्यान करते हैं, फिर संपर्क करते हैं, फिर भोग लेने का प्रयास करते हैं, फिर आसक्त हो जाते हैं, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर स्मृति नष्ट होती है, फिर विनाश होता है, फिर जीव दुर्भाग्य की खाई में ढकेला जाता है और निरंतर दुख भोगते रहता है। और आनंद मयोभ्यासा, जीव जो है हमेशा आनंद के लिए ही प्रयास करते रहता है, उसका स्वभाव है कि वो आनंद को खोजते रहता है। अगर हम सब लोग भक्त बनने के बाद भी अगर आनंद को खोजेंगे, उसमें कोई गलती नहीं है, वो हमारा स्थायी भाव है, और उस स्थायी भाव को सही तरह से अनुभव करना हमारा अधिकार है। जैसे हम विवाह करते हैं तो हम आनंद की अपेक्षा करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रभुपाद जी ने भी कहा है और गुरुदेव भी कहते हैं कि विवाह संस्था जो है वो इट इज़ टू बी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज़ द पर्पज ऑफ मैरिज, इज टू बी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इंद्रियों का भोग करने के लिए और दुखी होने के लिए गृहस्थ आश्रम नहीं बनाया गया। उसी तरह से जीव का मूलभूत स्थायी भाव है आनंद की खोज करना। और यहाँ पर सुखदेव जी को राजा परीक्षित स्वयं बता रहे हैं कि सर वो है जो भगवान के सामने झुके, अगर वो नहीं झुकता है तो मनुष्य के लिए वो बोझ बन जाता है। वही सर जो भगवान के सामने नहीं झुकता है, हाथ वो है जो अपने हाथों से भगवान की सेवा करें, पैर वो है जो वहीं चले जहाँ पर भगवान की सेवा है, या भगवान का मंदिर है, या भगवान का तीर्थ है, या भगवान का धाम है, वही पैरों का इस्तेमाल है। या भगवान का धाम नहीं होगा तो कम से कम जहाँ जा रहे हैं वहाँ भगवान की सेवा का प्रकल्प है, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। आँखों का विषय भगवान है और भगवान के संबंधित चीज़ें हैं। ऐसे कहते हैं कि जब हम सवेरे या दिन में जब भी भगवान का दर्शन करते हैं, हमारा मन एकदम साफ हो जाता है। कोई रात को बुरा सपना आया है, कुछ बुरे विचार कल आए थे, कल को झगड़ा हुआ था, मन उद्विग्न है, त्रस्त है, जैसे ही ये सारा चीज़ होते हुए भी हम सवेरे जाकर भगवान का दर्शन करते हैं, तुरंत मन एकदम स्वच्छ हो जाता है और स्वच्छ होने के बाद प्रफुल्लित होता है, क्योंकि किसके संपर्क कर रहे हैं आप? हाँ, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, ऐसे दिव्य भगवान के दिव्य स्वरूप का श्रृंगार किया हुआ, भक्तों के प्रेम के द्वारा श्रृंगार किया हुआ ऐसे भगवान का नित्य नव नवायमान रूप का दर्शन कर रहे हैं। तो स्वच्छ होने के बाद आनंद का अनुभव आना ही है, देखते रहते हैं लोग, हाँ, घंटों घंटों, कभी कभी मिनटों मिनटों देखते रहते हैं उनको, वहाँ से कृष्ण बलराम जी के सामने से निकलने का दिल नहीं करता है, वहीं खड़े रहते हैं, वो बोलना पड़ा, जाओ आगे जाओ, पीछे भी लोग खड़े। कान, कान का विषय ऐसे कहा गया है कि कान अगर हो उससे हम ग्राम में कथा सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु बहुत मना करते हैं उसके लिए, ग्राम में कथा ना सुनी बे, ग्राम में कथा ना कोई बे। जो कान केवल भगवान का विषय छोड़कर बाकी चीजों के बारे में सुनते हैं, वो कहते हैं वो सांप के बिल की तरह है, वो केवल हमको दुख की खाई में भेजते हैं, मेंढक की तरह मृत्यु की ओर लेके जाते हैं वो श्रवण जो भगवान के विषय में नहीं होता है, जो जीव की जाने अनजाने में ऐसी अधोगति कर देता है। तो कान का विषय है भगवान के विषय में श्रवण करना, उनके सुंदर लीलाओं का उत्तम श्लोक, भगवान के उत्तम श्लोक के द्वारा जो वर्णन किया गया है, उन्होंने जो कार्यकलाप किए हैं उनके बारे में वर्णन सुनना, ये कान के लिए बहुत ही आनंदकारी है। नहीं तो कान जैसे कान ही है, या हाथ पैर हैं, या आँखें हैं, सर है, इनका रोज का द्वंद्व चलते रहता है। हम सोचते हैं हमने दीक्षा लिया है, अभी कई साल हो चुके हैं और भगवान की सेवा में भी लगे हुए हैं हम लोग, जब भी करते हैं सेवा करते रहते हैं, गुरु जी की आज्ञा पालन में भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजामि हम, जितना समय दिन में हम विषयों से संपर्क करते हैं भगवान के अलावा, उतना समय हम अपने इंद्रियों में पाप इकट्ठा कर रहे हैं, अधोगति का टिकट निकाल के रख रहे हैं। और जितना समय जप कर रहे हैं, कुछ सेवा में लगे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, कथा में बैठे हुए हैं, उतना समय उसको धो रहे हैं। फिर जितना समय वापस भोग के विषय में लिप्त हो गए, वापस पाप जमा कर रहे हैं। घर में कैसा होता है, रोज झाड़ू मारते हैं हम लोग, रोज भाई आते हैं, हम सब खुद साफ करते हैं, पोछा मारते हैं, किचन साफ करते हैं, बाथरूम साफ करते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन दिन में क्या होता है, दोबारा कचरा निर्माण होते रहता है, फिर शाम को दोबारा झाड़ू लगाना पड़ता है, फिर सुबह वापस झाड़ू लगाना पड़ता है, फिर पोछा लगाना पड़ता है, फिर कई दिन के बाद में वो खिड़की की जाली निकाल कर साफ करना पड़ता है, उसके अंदर के वैक्यूम करना पड़ता है। तो जब तक हम इस दुनिया में रहने वाले हैं तब तक ये प्रक्रिया रोज चलने वाली है। हम रोज जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो रोज हम लोग झाड़ू मार रहे हैं, साफ कर रहे हैं अंदर, आत्मा को चेतो दर्पण मार्जन के रूप में स्वच्छ कर रहे हैं। लेकिन फिर दिन भर में दोबारा जाने अनजाने में शुद्ध भक्त न होने के कारण जो भी हमारा संपर्क विषयों से होता है उससे फिर गंदगी यहाँ जमा करते रहते हैं हम लोग। ये सारा रोज का जो प्रक्रिया है, ये रोज करते हुए एंड में जब मृत्यु आएगा तो हमारी उम्मीद क्या है कि आज एक फाइनल झाड़ू लगाई जाएगी जिसमें पूरा स्वच्छ किया जाएगा और नया कुछ कचरा अंदर नहीं आना चाहिए उस क्षण के अंदर, तभी उसमें भगवान की स्मृति उत्पन्न होगी और तभी हम उस क्षण के बल के आधार पर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कितना संघर्ष है देखिए, और इसमें अगर हम रोज भगवान के नाम का जप एक पुकार की तरह नहीं करेंगे तो जप भी मैकेनिकल हो जाएगा, एक ऐसा साधारण तोते का रटने जैसा हो जाएगा, उसके अंदर भावना नहीं रहेगी, उसके अंदर चेतो दर्पण मार्जन नहीं होगा, तो क्या होगा, वो जब के अंदर भी मन में विचार चलते रहेंगे, कल किसने क्या बोला, कल ऐसा क्यों बोला, फिर मैंने उनको ऐसा बोलना चाहिए था, अभी मैं आज बोलूँगा उसको, फिर घर में ऐसा क्यों हुआ, क्यों धन ज़्यादा नहीं मिल रहा है, क्यों कम मिल रहा है, जब उस समय विषयों का चिंतन हो रहा है तो उस समय भी पाप इकट्ठा हो रहे हैं मन के लिए, पाप प्रवृत्तियाँ या पाप बीज बढ़ रहा है। तो ये बड़ा एक जीवन भर का संघर्ष है। तुकाराम महाराज कहते हैं दिवस रात्र अम्मा युद्धा से प्रसंग, अंदर और बाहर से हमारा युद्ध चलते रहता है और ये बड़ा कठिन युद्ध है। आसान क्या है, बोलने का थैंक यू वेरी मच, इंद्रियों को भोग करते रहो, जो होता है देखा जाएगा, इसलिए जिलेबी सामने आ रही खा लो उसको, आगे क्या हुआ देखा जाएगा उसको, दिस इज इजिएस्ट वे। लेकिन ज्ञान प्राप्त करके उन चीज़ों को समझना, उसका अर्थ समझना, हमारे हित में क्या है वो समझना, उसके प्रकार कार्य करते रहना और लगातार निश्चय बना कर रखते हुए निश्चय पूर्वक दृढ़ता पूर्वक उसको करते रहना, चाहे अच्छे अनुभव आ जाए, बुरे अनुभव आ जाए, विष बीच में ऊपर आ जाए और वो तकलीफ करे, या तो बीच में कभी आनंद आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, ये सारे अनुभवों के बीच में एक दृढ़ता जो है वो बनाए रखना कि कुछ भी हो जाए, आज उम्र 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 80 साल में मर जाना है, तो वो समय पर हमको टारगेट हमारा क्लियर है क्या करना है। ये हमारे भक्ति का एक्चुअली रहस्य है। इसलिए केवल एक ही चीज़ करनी होगी, इंद्रियों को सुख चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है, हमारे इंद्रियों को भी सुख चाहिए, जो अभक्त है उसको भी चाहिए, और संत परम सुख है, परम संत है उसको भी इंद्रियों को आनंद अच्छा लगता है, क्योंकि वो जीव का स्वभाव है, उसमें कुछ गोलोक जाके दुख थोड़ी अनुभव करना है। गोलोक में हम क्या सोचते हैं, गोलोक में क्या मिलेगा, संघर्ष होगा थोड़ी, नहीं संघर्ष नहीं होगा, गोलोक में तो आनंद ही आनंद मिलेगा, जो जीव को परिपूर्णता है। लेकिन आज की तारीख में हमको किसी भी तरह भगवान के नाम, भगवान के लीला और भगवान के धाम के विषय में पर्याप्त मात्रा में रुचि उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक आप इस दुनिया में, हम दुनिया में जीने वाले हैं, तब तक रोज का संघर्ष हमारा चलते रहने वाला है, और संघर्ष ही नहीं पुराने कर्मों का फल भी मिलने वाला है, बहुत कसौटियाँ भी होने वाली है, बहुत परीक्षाएँ होने वाली है, और उन परीक्षाओं से और माया के द्वारा भेजे गए जो कष्ट हैं उनको सामना करने के लिए हमको पर्याप्त मात्रा में भगवान के विषय में रुचि होना बहुत ज़रूरी है। किसके बलबूते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे? समझो आपके बच्चे को जरा सा कुछ हो गया तो बुखार आता है, जरा सा कुछ हो गया तो दस्त होते हैं, जरा सा कुछ हो गया तो निमोनिया होता है, जरा सा कुछ हो गया तो बुखार आ जाता है, और वो जब तक बच्चा आपके साथ में तब तो चलने वाला है। तो अगर माँ को लगातार निश्चयपूर्वक सातत्यपूर्ण से अगर उसको माँ को देखभाल करनी है तो माँ को बच्चे के प्रति बहुत प्रेम होना चाहिए। उतना अगर प्रेम पीछे है तो ही वो उसको दिन रात जगकर उसका सेवा कर सकती है। लेकिन उसी माँ के सामने पड़ोसी का बच्चा ला के रखो, जिसको भी दस्त हो रहा है, जिसको भी खांसी आ रही है, जिसको भी निमोनिया हो रहा है, जिसको बुखार आ रहा है, वो उठ पाएगी रात को? नहीं उठ पाएगी। दिन में कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। बोला एक पड़ोसी का बच्चा दो दिन के लिए आपके पास छोड़ते हो, जरा देखभाल कर लो, जरा बाहर गए वो लोग, तो आपको पहले कहेंगे मैं क्यों देखूं, उनको बच्चे को साथ लेके जाना चाहिए या तो अपना टूर कैंसिल करना चाहिए। लेकिन उसी सामने उसी समय अगर आपके बच्चे को छींक आती है तो आपको सब छोड़ के उसके पीछे जाओगे। इसके पीछे एक ही कारण है, वो है प्रेम। वो प्रेम है इसलिए सारा कष्ट झेलने को आप तैयार हो। उतना प्रेम और लगाव और रुचि उस विषय में नहीं होगी तो आप वो कार्य नहीं कर सकते। थोड़ा सा संघर्ष हो गया तो आपको छोड़ देंगे उसको, थोड़ा सा कठिनाई आ गई तो छोड़ देंगे उसको, लेकिन लगातार आप उस चीज़ को करते रहोगे। अगर आपको उस चीज़ के प्रति प्रेम है, उस कार्य के प्रति लगाव है, आपको एक उच्च अभिरुचि है उसके लिए, उच्च उद्देश्य आपके मन में कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। जैसे प्रभुपाद जी को हरे कृष्ण आंदोलन स्थापित करने के लिए कितना कष्ट हुआ, लेकिन वो छोड़ के चले क्यों गए? नहीं गए, उनको उस पर लगाव था, प्रेम था, गुरु जी के प्रति आदर था उनकी आज्ञा पूर्ण करने के लिए, और एक उच्च ध्येय था, उच्च अभिरुचि थी, इसलिए इतना कष्ट होने पर भी वो करते रहे उसको। तो अभी हमारा स्थायी भाव यानी हमारा जो बैकग्राउंड है वो इंद्रिय भोग का है आज के तारीख में, लेकिन वो हमको बदल कर कृष्ण के नाम के प्रति रुचि, कृष्ण के धाम के प्रति रुचि, कृष्ण के लीला के प्रति रुचि बनाना है उस स्थायी भाव को। और ऐसा नहीं कि इतना बड़ा टारगेट दे रहे हो आप, कैसे करना है उसको? प्रभुपाद जी ने उसको फॉर्मूला दे कर रखा है, आप रोज चार नियम का पालन करो, 16 माला भगवान के नाम का जप करो, रोज भागवत सुनो और रोज दर्शन करो भगवान का, रोज भगवान की जो सेवा प्राप्त हो रही है उसको करो, तो ये साई भाव जो इंद्रिय भोग का है वो बदल जाएगा। हाँ, क्या कहते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवाया, अधिक मतलब प्रायः मतलब ऑलमोस्ट 100% जितने अभद्र चीज़ें हैं वो ये भागवत का श्रवण करने से नष्ट हो जाएंगी, वो ये भगवान का नाम जप करने से नष्ट हो जाएंगी। और नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। क्या होगा, जहाँ पर आज इंद्रियों के प्रति आसक्ति बसी हुई है वहाँ पर भगवान की नैष्ठ की भक्ति स्थापित हो जाएगी, मतलब इंद्रियों की आसक्ति विस्थापित हो जाएगी और भगवान की भक्ति आज आकर वहाँ बैठेगी। जिस घर में चोर बैठा हुआ है उस घर में चोर जाएगा निकल के और संत आके बैठेगा, एक सज्जन आके बैठेगा। तो हमने सब लोगों ने मिलकर अपनी इच्छा से, दुर्भाग्य से, अपने सारे घरों में चोरों को आसरा दिया है। जब चोर किसी घर में बैठते हैं तो क्या होता है, केवल विनाश होता है, जो भी है वो नहीं हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, जो भी अच्छा है वो सब खत्म हो जाता है, गंदगियाँ पैदा होती है, विनाश का कारण बनता है। जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं कि टेलीविजन जो है वो एक वेश्या है, उसको घर पे लाएंगे तो क्या होगा, वो आपका सारा सत्व हरण कर लेगी। वैसा नहीं कि वेश्या आएगा बैठ के कोने में, कुछ नहीं कर सकती, आराम से बैठी हुई अपना अपना काम कर रही है, नहीं, उसका होना ही उसके कार्य का एक प्रमाण है। वो कुछ ना कुछ आपको मोहित करेगी, आपके तरफ से आपको पतन के लिए प्रवृत्त करेगी। तो वैसे ही हमने उस वेश्या की तरह चोरों को, वेश्याओं को अपने इंद्रियों में आकर बसाया है। और इंद्रियों का व्यभिचार क्या है, जो हमारे प्रियतम है, हमारे पति जैसे, हमारे नाथ जो है कृष्ण है, उनके अलावा सारे अन्य नाथों को स्वीकार कर लिया है, उनको अपना बना लिया है। जो हमारे नाथ नहीं है, जो हमारे सेवा के योग्य नहीं है, उन लोगों को अपना नाथ बनाकर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। विफल है सेवनु कृपण दुर्जन चप्पल सुख लबलाभिते, थोड़े सुख के लिए, थोड़े थोड़े समय के सुख के लिए हमने उन सारे चोरों को अपना स्वामी बना लिया है और फिर हम लोग दुख भोग रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति वेश्या के पास जाकर गुप्त रोगों से परेशान होकर दुख भोगता है जीवन भर के लिए, थोड़े समय के आनंद के लिए जीवन भर HIV और STD उसको हो जाता है, उसी तरह से हम लोग इंद्रियों को भगवान की सेवा में न लगाने से बार बार दुख भोगते रहते हैं अनंत काल तक, जन्म जन्मांतर तक। इसलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज ये पूछ रहे हैं प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुझे उन भगवान के दिव्य कार्य कलाओं के बारे में पूछिए, बताइए, जो उत्तम श्लोक हैं, जिनको उत्तम श्लोकों से जिनका गुणगान किया जाता है। तो बार बार श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज के इस सुंदर भाव की वजह से सुखदेव जी भी जो भूखे प्यासे हैं, अभी दशम स्कंद चल रहे हैं, तो मेरे विचार से पांचवा दिन खत्म हो गया रहेगा, छठवां दिन चल रहा होगा, दिन में कहीं बीच में, छठे का बीच में हम लोग हैं अभी, फिर दशम स्कंद, 11 स्कंद 12 स्कंद में छठवां सातवां दिन जब खत्म होगा तो उधर पहुंचेंगे। इतने दिन में ना इन्होंने पानी पिया है, ना इन्होंने पानी पिया है, ना सुखदेव जी सोए हैं, ना परीक्षित जी सोए हैं, ना और कथा बैठने वाले लोग सोए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ना किसी ने भोजन किया है। और फिर भी 5.5वें 6वें 6.5वें दिन भी परीक्षित महाराज को ऐसे क्या म्हणतात मराठी, उकळ्या फुटतात, उकळ्या आनंदाच्या, म्हणजे इतना उत्साह से वो प्रश्न पूछ रहे हैं, थक गए नहीं गए, प्रभु जी अभी 8:30 बज गए प्रभु जी, अभी खिचड़ी का समय हो गया, अभी कब कितना खींचेंगे आप, ऐसा नहीं है, आप बोलते जाओ, हम सुनने को तैयार हैं, नया नया प्रश्न कर रहे हैं। और बार बार सुखदेव जी उनको अभिनंदन कर रहे हैं, वाह क्या बात है, आप अभी भी मुझे इतना सुंदर प्रश्न कर रहे हो, इतनी बड़ी भाग्य की बात है, मेरा उत्साह बढ़ा रहे हो। क्योंकि वक्ता कैसा होता है, जितना श्रोता का उत्साह होता है उतना वक्ता का उत्साह बढ़ते जाता है, वो और उनको देने का प्रयास करता है। तो ये स्थिति है सुखदेव जी की और परीक्षित महाराज की, इसलिए इतना सुंदर शास्त्र प्रकट हो गया है। अगर वो मुमुक्षुता, वो उत्साह और जो जिजीविषु स्वभाव जो है परीक्षित महाराज का, वो अगर नहीं होता तो सुखदेव जी भी सोचते हैं ठीक है 5 दिन बंद करो, अभी क्या है, सुनने वाले को जिसके लिए कर रहे हैं उसको इतना उत्साह नहीं है, जितना पात्रता है उतना देंगे उसको। लेकिन उन्होंने सर्वश्रेष्ठ वस्तु परीक्षित महाराज को क्यों दी है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से अपने स्थायी भाव को प्रकट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका मन ऐसा नहीं बोल रहा है अरे 7 दिन है मेरे पास, 2-3 दिन जरा इधर उधर जाके घूम के आता हूँ, सबको मिल के आता हूँ, कोई कोई भोजन को बुलाएगा तो खा के आता हूँ, लास्ट दिन में बैठ जाता हूँ थोड़ा सा सुखदेव जी के साथ, इतना बड़ा राज्य है मेरा, इतनी जिम्मेदारी है, थोड़ी छोड़ दूंगा ऐसे में, सब मेरे कर्तव्य हैं, परिवार के लोग हैं, सबको मैं फाइनल विलिंग लिविंग विल बना के आऊँगा मेरी उनके साथ में जो हमारे हॉस्पिस में होता है। ऐसा किया क्या उन्होंने, तत्क्षण वो आ गए कि मुझे सुनना है, बताओ मुझे क्या करना है, जीवन के अंत में जो खड़ा है उसको क्या करना चाहिए, वो तुरंत बैठ गए, तुरंत छोड़ के तुरंत बन गया। इसका मतलब भागवत जी शुरू होने के पहले भी परीक्षित महाराज का स्थायी भाव वही था जो भागवत सुनने के समय था, इसलिए वो ये निर्णय ले सके कि मुझे तुरंत अभी सत्संग में बैठना है। वैसे ही हमारा भी मृत्यु का समय जब आएगा तो जीवन भर का स्थायी भाव अगर भगवान की सेवा नहीं रहेगा तो उस समय भी हम सोचेंगे क्या करें, करें क्या नहीं करें, और गति फिर तुरंत बदल जाएगी हमारी। इसलिए हमारा जो स्थायी भाव है उसको बदलने का प्रयास करना हमारे लिए परम कर्तव्य है। इसके पर गहरा विचार करना जरूरी है कि आज मेरा स्थायी भाव क्या है, क्या मैं जीवन के आने वाले दुखों से बहुत परेशान हूँ, कष्टमय दुख का अनुभव कर रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब्ड फ्रस्ट्रेटेड विद दैट, कि क्या मैं उसी के साथ साथ मेरा कर्तव्य निभा रहा हूँ, मेरे भगवान की भक्ति को निभा रहा हूँ। क्योंकि जीवन में संघर्ष हमारे आते ही रहेंगे, या तो माया की तरफ से आएंगे या कृष्ण की तरफ से आपके पहले परीक्षा आएगी आपके अच्छे के लिए, लेकिन दोनों तरफ आपके लिए संघर्ष निश्चित है। एक संघर्ष नरक की ओर ले जाएगा, एक संघर्ष आध्यात्मिक विश्व की ओर ले जाएगा, लेकिन संघर्ष निश्चित है, इतना बात ध्यान रखना। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आ गया है उसको आगे जाना है, और जो अभी तक शुद्ध भक्त नहीं बन गया है उसके लिए संघर्ष इज निश्चित, निश्चित रूप से आने वाला है। उसमें से आपको अगर निभाना है, अपने आप को बनाए रखना है और उसको प्रगति के पात्र पर बनाए रखना है अपने आप को, यू टू मेंटेन योर सेल्फ ऑन प्रोग्रेसिव पाथ टूवर्ड्स कृष्णा, तो फिर हमको अपना स्थायी भाव बदलना होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी, छोड़ नहीं देना होगा। जो भक्त ऑलरेडी उस स्थायी भाव में है उनके संग में रहना होगा, जब जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, पत्नी है, पति है, गुरु भाई है, गुरु बहन है, मंदिर है, वहाँ पर जाकर आपको ढूंढना पड़ेगा कौन मुझे स्थायी भाव बदलने के लिए मदद करेगा, हु विल हेल्प मी, उसके संग में रहना पड़ेगा। एक बात है रोते रहना कि प्रभु जी देखो ना ऐसा तकलीफ हो रही है, वैसा है, बच्चे का तकलीफ है, वाइफ का तकलीफ है, घर में शांति नहीं है, फिर पैसा नहीं आ रहा है, भोजन के लिए ठीक नहीं है, लोन है बहुत सारा, सब गणित बदली हो गया हमारा लाइफ का, सब इतनी परेशानियां हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, हाँ वो एक बात है। और दूसरी बात, ये सब कुछ होते हुए भी बनाए रखना अपने पाथ, उस पथ पर अपने आप को कोशिश जारी रखनी है, छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि जब आनंद है तो बहुत जप कर लिया 64 राउंड्स और आनंद है तो फिर यात्रा में गए, डोनेशन दे दिया, तीर्थ यात्रा में चले गए, भगवान के भक्तों को सेवा किया, और जैसे ही दुख आ गया वो सब बंद कर दिया, बोले प्रभु जी कितने परेशान हैं। तो भक्ति मार्ग जो है वो केवल जब सब कुछ ठीक चल रहा है तब चलने के लिए दिया गया मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग वो है जो दुख हो या सुख हो सब स्थिति में करने के लिए एक परिपूर्ण मार्ग हमको दिया गया है। अभी आप यहाँ पर आगे सुदामा की कहानी सुनेंगे जो अभी सुखदेव जी शुरू कर रहे हैं। परीक्षित महाराज के सुंदर प्रश्न के उत्तर के रूप में उन्होंने सोचा कि अभी सुदामा की कहानी बताई जाए। तो सुदामा की कहानी में क्या है, सुदामा की कहानी में एक तो गरीबी है, इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि हम लोग कभी भी उसका विचार नहीं कर सकते हैं, इतना भी गरीब कोई हो सकता है। और मैं क्या कभी मैं अपने आप को सुदामा की गरीबी की स्थिति में अनुभव करने का धाड़स कर सकता हूँ क्या? अनेक दिन भूखा रहने के बाद भी उनके शरीर ऐसा कांपता था, ऐसे बात करते वक्त भी नो हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना, शुगर कम होने के बाद में कैसे शरीर कांपते रहता है, ऐसे 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 कांपते रहते। उस अवस्था में भी वो कृष्ण का भजन करते थे, यहाँ पर सुखदेव जी का वर्णन भी ऐसे आया है, भगवत परायण है वो, अभी भी 6 दिन उपवास करने के बाद भी वो लीन है भगवान के ध्यान में। और पत्नी बोल रही है कि अभी जाइए आप दोस्तों के दोस्त के पास जाइए, जरा आपके कृष्ण भगवान दोस्त है द्वारकाधीश, उनसे पास जाके कुछ मांग लीजिए आप भिक्षा। और वो भी ऐसी पत्नी है, इधर लिखा है कि वो जो भिक्षा आती थी कभी कभी अपने ही इच्छा से, मतलब ऐसे नहीं कि वो भिक्षा, ऐसे नहीं कि वो मांग रहे हैं भिक्षा, जो आ रहा है अपने आप कोई दे के जा रहा है वो भी अपने पत्नी को, पति को देती थी वो। आई कैन नॉट इमेजिन कैसे कैसे कर सकता है व्यक्ति, अगर उसके मन में उच्च स्थायी भाव है तो ही वो कर सकता है, तो पहले खा लेगा वो फिर देखेगा दूसरे के बारे में। रंती देव का भी स्थायी भाव देखिए, इतना दिन उपवास करने के बाद में इतने मौके आ रहे हैं कि उसको जरा भी ठीक से करें तो एक 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 परीक्षाएं आ रही, लेकिन स्थायी भाव कृष्ण भावना होने की वजह से वो सब कुछ जो किया उन्होंने वो कर सके। तो सुदामा जी का वही उदाहरण यहाँ पर आया है, इतना समर्पण, इतना भगवान के प्रति प्रेम। और वो भी पत्नी ने बहुत उनको पुश किया कि आप जाओ जाओ, तो भी वो गए मांगने के लिए नहीं गए एक्चुअली, वो सोचा कि चलो पत्नी अगर इतना आग्रह कर रही है उस बहाने में जो कृष्ण का दर्शन हो जाएगा कितना अच्छा होगा। वहां जाके भी मांगा नहीं उन्होंने कुछ, ये हमारे लिए अब आप कहते हैं प्रभु जी अभी हम कैसे फॉलो करें इसको, सुनने के लिए अच्छा है बताने के लिए भी अच्छा है, बहुत मुश्किल है प्रभु जी करना ही। सही बात है, सही आसान क्या है, पैसा कमाना आसान है क्या, इंद्रियों का भोग करना आसान है, सुंदर स्त्री का भोग मिलना आसान है क्या, नौकरी में प्रमोशन मिलना आसान है, आसान क्या है दुनिया में, आसान कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज अ स्ट्रगल। कुछ भी प्राप्त करना है तो स्ट्रगल है, संघर्ष परमानेंट है यहाँ पर, इसलिए हमको संघर्ष वो चुनना है जो हमारे लिए हितकारी है, और उसको संघर्ष को अगर यशस्वी रूप से हमको निभाना है, यशस्वी रूप से उसको पार करते हुए आगे चलते रहना है प्रगति के रास्ते पर, तो स्थायी भाव बदलना पड़ेगा। इसलिए ऐसे कहते हैं कि हम जो लोनावला जाते हैं ना, तो उधर हम लोग कैंटोनमेंट से जाते हैं, लश्कर छावनी से जाते हैं, उधर लश्कर छावनी है लोनावला में, बहुत बड़ी है, उधर एक बोर्ड लगाया बड़ा जोर से, बड़ा मोटा बोर्ड लगाया उधर, लगाया है कि जब युद्ध नहीं होता है तो जो सैनिक बहुत मेहनत करता है, अभ्यास करता है ना, कसरत मतलब उसका जो रोज का गोली चलाना वो जो करता है, जो युद्ध नहीं होने के समय बहुत मेहनत करता है, वो युद्ध होने के बाद में घायल नहीं होता है। क्या उसका इंग्लिश में कहते हैं उसको, द मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। जो युद्ध ना होते हुए बहुत शस्त्र का अभ्यास करता रहता है, युद्ध के समय से वो बहुत कम घायल होता है, उसका खून नहीं बहता ज्यादा। हमको ये बहुत सोचना चाहिए इसके बारे में कि जब संकट नहीं आपके जीवन में, कुछ अभी अपरेंटली आज के तारीख में कुछ बड़ा भयंकर घटना आपके जीवन में नहीं हो रही है, तब हमको पुकार पुकार के जप करना चाहिए आगे आने वाले निश्चित संकट के सामना करने के लिए। अभी आप यात्रा में हो, कोई अपरेंटली संकट नहीं है, मन लगाकर भगवान की कथा सुनो, मन लगाकर सत्संग में बैठो, मन लगाकर धाम के लिए प्रार्थना करो, एक एक कर्ण के रज में जहाँ बैठे हो उसका ध्यान करो कि हम कहाँ बैठे हैं, मन लगाकर यात्रा करो, दिल लगाकर श्रवण करो, दिल लगाकर प्रार्थना करो और कृतज्ञ भावना में रहो, बी ग्रेटफुल ऑल्सो, तब जाकर वो जो पूंजी आप बटोरोगे उसके साथ आप आने वाले संकट का यशस्वी रूप से सामना कर सकते हो। इसलिए आज आपका समय है, डोंट वेट फॉर एक्चुअल ट्रबल्स टू कम टू स्टार्ट चैंटिंग नाइसली, अच्छा है तभी करेंगे तो भी, लेकिन जब संकट आएगा तब मैं पुकारूंगा हृदय से, इसका वेट मत करना, ये समझ लेना कि संकट आएगा ही, भगवान का प्रॉमिस है कि संकट आएगा ही, इसमें कोई वो जब थे तब भी संकट आता था ना कि नहीं आता था, अरे खुद प्रकट थे वो, ब्रजवासियों के बीच में प्रकट थे, इतने बड़े धाम में थे, सुधा माई के साथ थे, नंद महाराज के साथ में थे, क्या संकट कम आएगा। उसी समय कंस भी वहीं पर था, अरिष्टासुर केशी शकटासुर पुतना वो सब लोग इधर उधर ही थे, दिन रात संघर्ष था उनके लिए, किधर फ्री थे वो, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अरे हम फ्री रहेंगे, हमारे जीवन में संकट नहीं आना चाहिए। अरे कृष्ण स्वयं होने के बाद भी संकट था उधर, तो कृष्ण ऐसा नहीं कहते कि मैं अगर आप कृष्ण भावना भावित हो जाओगे, मेरे भक्त बन जाओगे तो संकट प्रूफ हो जाओगे, ऐसा गारंटी नहीं है, पीस की गारंटी नहीं है, आनंद मिलेगा आपको लेकिन शांति मिलेगी इसका गारंटी नहीं है, ब्रज में भी नहीं है। लेकिन उनका एक ही कारण था, वो सब लोगों का स्थायी भाव कृष्ण प्रेम था, इसलिए इतना सब होने के बाद भी कभी भी उन्होंने एक कृष्ण को बुरा शब्द नहीं बोला या कोई गाली नहीं बकी उनके लिए, उनके ही साथ रहे, क्योंकि उनका जो प्रेम था वो उनको सारे संकटों से पार कर ले जाने वाला था। इसलिए जब हम कृष्ण लोग बोलते हैं ना कि भाई क्या प्रभु जी इतना 10 साल जप किया, लगता है संकट बढ़ रहे हैं, सोचा था संकट कम हो जाएंगे लेकिन बढ़ रहे हैं संकट हमारे जीवन में, कष्ट बढ़ रहा है, पीड़ा बढ़ रही है, तो क्या हम करें जप कि नहीं करें, पता नहीं गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। लेकिन हमारा भगवान भावना भावित होना, उस प्रकार का स्थायी भाव बनाना, ये संकट कम होने के लिए नहीं कर रहे हम लोग, वो तो इच्छा होगी कृष्णा के संकट कम हो जाएंगे, लेकिन हम सब लोग ये कर रहे हैं उनसे दोबारा जुड़ने के लिए, और इस बड़े समस्या को एक परमानेंट हल देने के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हल होते समय तुरंत आप दुख से मुक्त हो जाएंगे, तुरंत आनंद का अनुभव होगा। रूप गोस्वामी कहते हैं जैसे ही हम भक्ति पूर्ण कार्य करते हैं तुरंत आनंद का अनुभव होगा, लेकिन तुरंत दुख से मुक्ति होगी ये नहीं बताया है, वो तो धीरे धीरे होगा जैसे आप बनोगे तब। क्लेशाग्नि प्रथम दिया हुआ है परिणाम, लेकिन तब जब हम शुद्ध भक्ति की क्रिया करेंगे तब तो टाइम लगेगा ना शुद्ध भक्ति की स्थिति आने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर अनुभव मिलेगा, लेकिन आनंद पहले मिलेगा आपको। प्रभुपाद कहते हैं ना, जैसे भगवान का नाम जप करते हैं तो इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का सारा स्तर पार करके आत्मा आत्म स्तर पर आ जाती है, स्पिरिचुअल लेवल पे, और तुरंत आनंद का अनुभव करती है, इसकी गारंटी है। नंबर वन गारंटी ऑलरेडी दे चुके हैं, उसी को पकड़ के रखना है। और जब कुछ कुछ संकट नहीं है तब तक इन चीज़ों को रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इवन प्रसाद भी ग्रहण करते हुए उस आनंद का अनुभव करना चाहिए कि ये गुलाब जाम कृष्ण को अर्पण किया हुआ है, ये खिचड़ी कृष्ण को अर्पण किया, कण कण कृष्ण ने आस्वादन किया हुआ है, ये धाम जहाँ बैठा हूँ यहाँ पर कृष्ण ने लीला किया है, ये कथा जो सुन रहा हूँ मेरे लिए कितनी कल्याणकारी है, सब जीवन के कष्टों से मुक्त करने वाली है आगे जाकर, कम से कम निश्चित रूप से। तो अगर हम अपने आनंदमय स्थिति को भगवान की सेवा में लगाकर अपने आप को ऊंचा उठाएंगे तो आने वाले कसौटियाँ और दुख जो है माया के द्वारा और कृष्ण के द्वारा परीक्षा के रूप में, वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे। वो आएंगे ज़रूर लेकिन प्रभावित नहीं करेंगे। तब चार नदियाँ अगर बाढ़ आकर सागर में प्रवेश करेंगी तो सागर विचलित नहीं होता है, लेकिन एक नदी में अगर चार नदियाँ आकर बाढ़ से मिल जाती है तो सब जगह बाढ़ आ जाती है। एक जमुना जी का जब बारिश होती है तभी वो डैम को छोड़ देते हैं, खोल देते हैं, तो पूरे ब्रज में वृंदावन में बाढ़ आ जाती है, सबके घर में पानी घुस जाता है। लेकिन वही अगर समुद्र में घुस गया तो समुद्र में किधर भी बाढ़ नहीं आती, समुद्र स्थिर रहता है क्योंकि समुद्र में इतना पानी है, दो चार नदियों के बाढ़ के आने से समुद्र का कोई परिणाम नहीं होता है उसके ऊपर। तो भक्ति का मतलब है हमको उस समुद्र की तरह बनना है ताकि फिर दुनियादारी के जो दुख सुख आते रहेंगे, संघर्ष होता रहेगा, वो इतना आपको प्रभावित नहीं करेगा। प्रभावित तब करेगा जब हमारा स्थायी भाव अभी भी विषय में लगा हुआ है, तब वो प्रभावित करेगा। आपकी श्रद्धा को भी तोड़ने का प्रयास करेगा कि करूँ कि नहीं करूँ, अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ, ऐसा भी श्रद्धा के लेवल में भी आपको कष्ट देगा वो। लेकिन जब श्रद्धा के आधार पर हम लोग थोड़ा बहुत रुचि उत्पन्न करेंगे अच्छे भक्तों के साथ, तो हमारा सारा संघर्ष जो है एक प्रकार से आनंदमय बन जाएगा। संघर्ष भी आनंदमय बन जाएगा, ऐसा हमारा भक्ति का मार्ग है। और इतने हम लोग भाग्यशाली है कि हमको प्रभुपाद जी की असीम कृपा से ये सर्वोच्च मार्ग जो है, सर्वोच्च विधि जो है वो प्राप्त हो गई है। कोई कॉम्प्रोमाइज विधि प्राप्त नहीं हुई है, कोई कर्मकांड, ज्ञानकांड, वो सिद्धिकांड वगैरह प्राप्त नहीं हुआ है, हमको वो सर्वोच्च चीज़ प्राप्त हुई है जिससे हम इन सारे चीज़ों को पार करके भगवान तक पहुँच सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का, कोई टीका है? यस प्रभु जी,
हरे कृष्णा प्रभु जी। ग्रामीण कथा आपने बोला था कि चैतन्य महाप्रभु के मना क्या है ग्रामीण कथा से, तो एक जैसे हम न्यूज़पेपर्स वगैरह कुछ एसेंशियल चीजें जैसे अपडेट्स है या रिसेंट कुछ है या फिर सब बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स है, तो हाउ डू वी ड्रॉ लाइन कि हम ग्रामीण कथा नहीं करते, मतलब व्हाट इज द वे टू बी कृष्णा
भक्त? उसमें ना फंस मत जाना, हाँ जितना जरूरी है उतना ही रखना उसके अंदर, उसके मन नहीं लगाना उसके अंदर। प्रॉब्लम क्या है, हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं पूरी तरह से। हमको जीवन में कर्तव्य के रूप में कुछ करना है तो हमको उसी तरह पे करना है। दुनिया में कर्तव्य करते रहो, मन जो है वो कृष्ण के पास रखो। ये दिमाग जो है बिंदु जो है ना हमारा, उससे दुनिया में काम करते रहो और हृदय से भगवान से अपना संबंध जो है बना के रखो। गिव योर हार्ट टू कृष्णा एंड ब्रेन टू द मटेरियल वर्ल्ड, दिस इज द लाइन यू कैन ड्रॉ। उसमें ही फंस गए और कमाएंगे और लगेंगे रोज देखेंगे तो फिर वो मन जो है ना वो एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा आपका, तो ना भजन कर पाएंगे ना कुछ संग कर पाएंगे, मन उसमें ही लगा रहेगा। आसक्ति पैदा नहीं करना है उसके अंदर, अपना टाइम देना है। हम लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना आ रहा है ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होना है, जितना आता है आते रहेगा, हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है टाइम पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बस उतना दिखना है। डोंट एवरी डे ओपन वेबसाइट्स एंड सी कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है और घंटों मत बिताओ। सबसे पहले भगवान को समय दो, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो अपना वही है, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इज द होली नेम। पुकारो सुबह उठकर भगवान को असहाय भावना से। फिर वो अगर हो गया आपका रूटी, फिर दिन में आपको सब समय मिलेगा तो आप देखते रहो उसको, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? यस
हरे कृष्ण बोल। जो यहाँ पर परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि भगवान का जो उत्तम उत्तम श्लोक से वर्णन है वो बताइए, यहाँ पर पूरा 18,000 श्लोक है भागवत में,
सब श्लोक जो भगवान का वर्णन करते हैं वो उत्तम है। भागवत का एक एक वर्ड उत्तम है। उत्तम का मतलब क्या होता है? जो तम से उठाकर आपको उच्च गुण में रखता है उसको उत्तम कहा गया है। श्लोक का मतलब वो शब्दों का संग्रह है जो इसके द्वारा हम कुछ मैसेज समझते हैं। तो श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक उत्तम श्लोक है। ऐसा नहीं कि इसके बाद वाला उत्तम श्लोक है, इसके पहले वाला थोड़ा सा कम बोला था। शुरू से लेकर जो कहा गया है वो सब उत्तम श्लोक हैं, क्योंकि अमलम पुराणम है। इसके अंदर भक्ति के अलावा और कुछ वर्णन नहीं किया गया है, कोई धर्म अर्थ काम कोष मोक्ष का वर्णन नहीं किया गया है, केवल श्री कृष्ण और उनके भक्तों का चरित्र वर्णन किया गया है, शुद्ध भक्तों का चरित्र, जिससे केवल हृदय की शुद्धि होती है। इसलिए कहा गया ना भक्तिर्भवती नैष्टिकी, भक्तिर्भवती नैष्टिकी केवल उत्तम श्लोक से हो सकती है श्रवण करने से। और कोई प्रश्न है किसी का? यस प्रभु जी।
हरे कृष्णा। वेरी नाइस पॉइंट दैट यू सेड, वी शुड गिव आवर हार्ट्स टू कृष्णा एंड द माइंड टू द मटेरियल वर्ल्ड। व्हाट इज द गोल्ड लाइन, द गोल्डन लाइन व्हिच ड्रॉस एंड टेल्स अस दैट मेरा हृदय कृष्ण के पास है और मन बहुत ही रहम है।
क्या आप दिन भर सोचते हो? उस पर आपको पता चलेगा आपका मन किधर है, आपका दिमाग कहाँ पर है, आपका चिंतन कहाँ पर है। देखो हर एक व्यक्ति दिन भर चिंतन करते रहता है। ऑल ऑफ अस आर मेडिटेटिंग 24 आवर्स अ डे, इवन इन स्लीप ऑल्सो। वो आपका लाइन कहाँ जा रहा है वो आप खुद ही देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपका दिमाग मटेरियल वर्ल्ड में है और हृदय कृष्ण के पास है, आपको खुद पता चलेगा। लेकिन अधिकतर हमारा हृदय जो है वो विषयों का चिंतन करते रहता है। तो हमको ही अपना आत्म परीक्षण करना है, सिंहावलोकन करना है और देखना है कि मैं एक्चुअली क्या हूँ। अभी मैंने प्रवचन दिया, इतना अच्छे अच्छे पॉइंट बताए, लेकिन मेरा चिंतन किधर है? दैट इज ओनली आई कैन टेल, ओनली माई गुरु विल सी, ओनली कृष्णा विल नो, हु एल्स विल नो, माई वाइफ विल ऑल्सो विल नॉट नो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो वो हमारा मन का जो वेवलेंथ है ना उसको हमको चेंज करके कृष्ण की ओर मुड़ना है। वो भी हमारे ही हाथ में है, पूरे स्वतंत्र आपको दिया गया है कि उस मन को कहाँ लगाना है, विषयों का चिंतन में लगाना है कि कृष्ण के चिंतन में लगाना है। अगर दिन रात जैसे प्रभुपाद जी 22 साल की उम्र से एक चिंतन में लगे हुए थे, कैसे मेरे गुरुजी का आज्ञा पालन करूं, बच्चे हो रहे थे, व्यवसाय कर रहे थे, यहाँ वहाँ बिजनेस ट्रिप्स कर रहे थे, हाँ फिर घर छोड़ के फिर संन्यास लिया, फिर झांसी गए, फिर उधर गए वृंदावन गए, फिर अमेरिका एक साल तड़पे, उधर जाके क्या चिंतन था? एक ही चिंतन था, हाउ टू फुलफिल माई गुरुज ऑर्डर। गृहस्थ अवस्था में, विरक्त अवस्था में एक ही चिंतन था। इसलिए रिजल्ट आप देख रहे हैं, उस चिंतन का परिणाम आप देख रहे हो। आज भी उनके जाने के बाद 50 साल पूरे हो गए, आज होने वाले मतलब, उसके बाद हम देख रहे हैं उसका चिंतन का परिणाम क्या है। तो एक चिंतन जो होता है ना वो बहुत पावरफुल होता है। जब उस चिंतन को हम कृष्ण की ओर मोड़ लेते हैं तो उसका बहुत दिव्य परिणाम दिखाई पड़ता है, जो एक व्यक्ति अपने आप से उम्मीद नहीं कर सकता, उतना दिव्य परिणाम उस चिंतन से होता है। तो आपका अगर क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइन विच ड्रॉज वेयर योर मेडिटेशन इज, ऑब्जर्व दैट एंड चेंज इट। और हम आप सोचेंगे कि अरे क्या इतना आसान है, चेंज इट कितना इजी है बोलने के लिए, लेकिन उसका फॉर्मूला भी दिया गया है हाउ टू चेंज इट। उन लोगों के संग में रहो जो चिंतन में हमेशा रहते हैं भगवान की विषय में, फिर आपको आसान हो जाएगा। उन लोगों के संग में जाओगे जो हमेशा पैसे के बारे में सोचते हैं, आपका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, मन का मन की चिंतन धारणा बदली हो जाएगी आपकी। आप उनके बीच में रहो जो कृष्ण के विषय में लीन रहते हैं। सुखदेव जी के संघ में यहाँ पर परिचित बैठे हुए हैं, ये भी एक कारण है कि उनका चिंतन भी बहुत श्रेष्ठ हो रहा है। बार बार वो उसके बारे में प्रश्न पूछते जा रहे हैं, क्योंकि सुखदेव जी का बार बार वर्णन आता है कि कैसे वो लीन थे भगवत ध्यान में कॉन्स्टेंटली। देखो यहाँ पर दिया है ना, जिनका हृदय भगवान वासुदेव के ध्यान में पूर्णतया लीन रहता था उन्होंने ये आगे का उत्तर दिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लेट अस ऑल मेक अवर मेडिटेशन on Krishna and Guru service. If Krishna is too high for us right now, at least on the order of Guru, on the mission of Guru, on the service of Guru, how to please Him. इसमें भी अगर चिंतन करेंगे ना, और कुछ हमको बोलना है, कुछ करना है, कुछ समस्या आ गई, इसको समाधान करना है, एक ही सोचना कि अगर ये समस्या मेरे गुरु के पास गई होती तो वो कैसे उसको सॉल्व करते, वैसे मैं उनसे प्रार्थना करके सॉल्व करने का प्रयास करूँगा जिससे उनको प्रसन्नता होगी. हाउ विल आई हैंडल दिस इफ 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 गुरु जी वुड हैव हैंडल दिस, हाउ ही वुड हैव हैंडल दिस. वो आपके चिंतन का और एक परिणाम है. इफ़ यू आर थिंकिंग कॉन्स्टेंटली टू प्लीज हिम, यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली, सॉल्व प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंगली. Is that satisfactory answer for you? Hare Krishna. कोई लास्ट प्रश्न है किसी का? बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.